का था, रूह वही रूप नया।
शोलागढ़ एट 34 किलोमीटर के पिछले भाग में आपने सुना कि सार्जेंट सलीम एक गुफा के अंदर फंस गया, जहां उसकी मुलाकात श्रेया से हुई। क्या वो उस गुफा से निकलने में सफल हुआ? विजय के खान को अगवा करने के बाद आगे उसका क्या हश्र हुआ? शियाली के मौत का राज क्या है? वो जिंदा है या मुर्दा? जानने के लिए सुनिए ये भाग। सार्जेंट सलीम इस जोर से यूरेका यूरेका चिल्लाया था कि उसकी आवाज पूरी गुफा में कई बार गूंज गूंज कर सुनाई देती रही। यूरेका शब्द का मतलब होता है मैंने पा लिया। इस शब्द के पीछे कहानी है। भौतिक शास्त्री आर्किमिडीज एक राजा के यहां दरबारी थे। एक राजा ने सोने का एक ताज बनवाया था। राजा को शक था कि सुनार ने मुकुट में मिलावट की है। मुकुट बहुत सुंदर था, इसलिए राजा उसे गलाए बिना ही जानना चाहता था कि उसमें कितने फीसदी मिलावट है। उसने आर्किमिडीज से पता करने को कहा। आर्किमिडीज परेशान थे कि पता कैसे किया जाए। एक शाम आर्किमिडीज के नौकर ने बाथ टब को पूरा लबालब भर दिया। आर्किमिडीज जब उसमें नहाने के लिए घुसे तो उनके शरीर के अनुपात में पानी टब से बाहर गिर गया। आर्किमिडीज ने इसी से नया सिद्धांत पा लिया। वो खुशी से राजा के महल की तरफ नंगे ही यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागने लगे। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? श्रेया ने सलीम से पूछा। बताता हूं, सार्जेंट सलीम ने कहा। सलीम रेंगते हुए काफी दूर तक आ गया था। गहराई में उतरने पर उसने अपने चेहरे पर साफ तौर से ताजी हवा का झोंका महसूस किया। उसने उठकर बैठने की कोशिश की तो उसका सर पत्थर से टकरा गया। चोट ज्यादा तेज नहीं लगी थी। वो लेटे ही लेटे आसपास टटोलने लगा। हवा कहां से आ रही थी वो ये समझ नहीं पा रहा था। वो लेटकर कुछ देर तक अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद ही उसने दिशा का अंदाजा लगा लिया था। अब वो पीछे की तरफ सरक कर वापस जाने लगा। दरअसल वो होल पीछे ही छोड़ आया था। उल्टे साइड में सरकने में उसे पसीने छूट गए। आगे बढ़ना आसान होता है, दोनों हाथों का सहारा होता है, पीछे सरकना उतना ही मुश्किल। कुछ पीछे सरकने के बाद उसने हाथ ऊपर किया तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो आराम से लेटकर सीटी बजाने लगा। उसके दिल को चैन आ गया था। दरअसल उसने गुफा से बाहर निकलने का होल तलाश कर लिया था। वो इतना बड़ा था कि एक आदमी आसानी से निकल सके। अचानक उसकी सीटी की आवाज धीमी पड़ गई। उसे एक बात याद आ गई। अब उसे उल्टे रेंगते हुए वापस जाना था, ये आसान नहीं था, लेकिन ऐसा किया जाना ही था। पहले उसे श्रेया को बाहर निकालना था, बाद में वो खुद अपने हाथों के जोर से ऊपर चढ़ सकता था। श्रेया के लिए यह आसान नहीं होता। सार्जेंट सलीम पथरीली जमीन पर लेटा हुआ धीरे धीरे वापस सरकने लगा। इस पूरी जद्दोजहद में रात गुजर गई थी और सुबह हो चुकी थी। गुफा में अंधेरा होने की वजह से सलीम को इस बात का अंदाजा भी न हो सका था। इंस्पेक्टर कुमार सोहराब खुफिया विभाग के सुपरिटेंडेंट के सामने बैठा हुआ था। सुपरिटेंडेंट मारियो डिसूजा काफी भन्नाया हुआ लग रहा था। इंस्पेक्टर सोहराब के सामने एक हिंदी अखबार रखा हुआ था। उसने कुछ देर पहले ही अखबार को तह करके रखा था। उसमें छपी एक खबर ने सुपरिटेंडेंट का मूड खराब कर रखा था। उस खबर को सोहराब ने सुबह ही पढ़ लिया था। उसने खबर को कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। सुपरिटेंडेंट के कहने पर उसने वो खबर बहुत ध्यान से दोबारा पढ़ी। खबर सार्जेंट सलीम के बारे में थी, अलबत्ता उसका कहीं नाम नहीं छापा गया था। खबर में लिखा गया था, खुफिया विभाग का एक जासूस फिल्म इंडस्ट्री की एक असिस्टेंट डायरेक्टर को लेकर फरार हो गया है। खबर में श्रेया का नाम छापने से भी गुरेज किया गया था। सोहराब, मैं जानना चाहता हूं कि सार्जेंट सलीम कहां है? सुपरिटेंडेंट मारियो डिसूजा का लहजा काफी गंभीर था।
सर, वो शियाली केस की तफ्तीश करने के लिए निकला था। 3 दिन से लापता है, उसकी तलाश की जा रही है।
ये बात तो ठीक है, लेकिन तफ्तीश के लिए लड़की को क्यों लिए फिर रहा है?
उससे कुछ राज निकलवाने थे।
उसके लिए लॉन्ग ड्राइव पर जाने की क्या जरूरत थी, सुपरिटेंडेंट मारियो ने उकताए हुए अंदाज में कहा। कुछ देर की खामोशी के बाद सुपरिटेंडेंट मारियो ने कहा, एनीवे तुम लोगों का काम करने का अपना तरीका है, मैं उस पर कोई कमेंट या रोक नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इस तरह की खबरें मूड खराब करती हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट?
वो जहां भी है सेफ है,
इंस्पेक्टर सोहराब ने कहा। ओह, मतलब आप जानते हैं कि वो कहां है, सुपरिटेंडेंट मारियो ने थोड़ा आगे झुकते हुए आश्चर्य से पूछा। इंस्पेक्टर सोहराब ने नदी किनारे की गई अपनी तफ्तीश के बारे में सुपरिटेंडेंट को बता दिया। सोहराब की बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तुम बहुत जहीन हो, इसका अंदाजा तो मुझे पीला तूफान कैसे ही हो गया था। तुम्हारी तफ्तीश परफेक्ट है, सलीम सुरक्षित है, लेकिन सलीम की तलाश तेज करो, वो भी हमारा काबिल जासूस है और तुम्हारा प्यारा भी। सुपरिटेंडेंट ने आखिरी वाक जरा रुक कर और मुस्कुराहट के साथ कहा,
शुक्रिया सर, सलीम की तलाश जारी है, जल्द ही हम पता लगा लेंगे।
सोहराब की बात पूरी होते ही प्योन कॉफी रखकर चला गया। ओ, आप तो एस्प्रेसो लेते हैं, चलो आज कैफे लाटे ही सही, सुपरिटेंडेंट ने मुस्कुरा कर कहा। दोनों कॉफी पीने लगे। कुछ देर बाद सुपरिटेंडेंट मारियो ने कहा, एक बात समझ में नहीं आई कि ये खबर अखबार में कैसे लीक हुई।
लीक नहीं हुई है, प्लांट करवाई गई है।
मतलब?
वक्त आने दीजिए, बता दूंगा।
क्या तुम ये कहना चाहते हो इसमें कोई साजिश है?
जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ।
ओह, आई सी, सुपरिटेंडेंट मारियो ने आश्चर्य से कहा और किसी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, कौन है इसके पीछे?
कुछ वक्त दीजिए सर, जल्द ही मुजरिम आपके सामने होगा, अब मुझे इजाजत दीजिए।
ये कहने के साथ ही इंस्पेक्टर सोहराब उठ खड़ा हुआ। ओके सोहराब, बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू सर।
विक्रम के खान बंगले पर था। वो सुबह से ही लॉन में बैठा शराब पिए जा रहा था। रात को दोनों लड़कियां उसे कार से उसके बंगले तक छोड़ गई थीं। घर आकर उसने खाना खाया था और चुपचाप सो गया था। सुबह उठने के बाद उसे रात वाली सारी घटनाएं किसी फिल्मी सीन की तरह एक के बाद एक याद आती चली गईं। जुआ खाने में बाउंसर के कत्ल से लेकर एक विदेशी के साथ वहां से भाग निकलने के बाद तक, और फिर विदेशी के धमकी देने के बाद पेंटिंग मांगने तक, सब कुछ दिमाग के पर्दे पर किसी फिल्म की तरह गुजरता चला गया। वो चार पैग पी चुका था और अब पांचवा बना रहा था। शुरू में उसने लाइट पैग ही लिए थे, अब पैग में सोडा कम और शराब ज्यादा होती जा रही थी। शराब पीने के बावजूद उसका दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा था। उसे आज शाम को हाशना वाली न्यूड पेंटिंग उस विदेशी के किसी आदमी के हवाले करनी थी। वो आदमी उसके स्टूडियो आने वाला था। उसने फैसला किया कि वो किसी भी कीमत पर पेंटिंग उस विदेशी को नहीं देगा। इस मामले में शाम को इंस्पेक्टर सोहराब से मिलकर उससे सारी बात बता देगा। अब वो किसी भी पछड़े में नहीं पड़ेगा, गंभीरता से अपने प्रोफेशन की तरफ ध्यान देगा। विक्रम ने यह भी फैसला कर लिया था। सब कुछ सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद वो सिसकियां लेकर रोने लगा। शयाली के जाने के बाद आज उसे पहली बार अकेलेपन का बहुत गहराई से एहसास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शयाली समंदर में डूब गई है और वो अथाह समुंदर के किनारे अकेले खड़ा है। अचानक एक गोली उसके पैरों के पास आकर जमीन में धंस गई। किसी बेआवाज रिवॉल्वर से गोली चलाई गई थी। अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाया था कि दूसरी गोली उसके दूसरे पांव के पास आकर फर्श में धंस गई। उसके दोनों पैरों के पास लॉन की कच्ची मिट्टी में गहरे सुराख हो गए थे। वो तेजी से उठकर अंदर की तरफ भागा। भागते हुए बोतल उसके हाथ में थी। सार्जेंट सलीम पथरीली जमीन पर लेटे लेटे पीछे की तरफ सरक रहा था। मुश्किल ये हो रही थी कि पैर की तरफ, यानी जिधर वो जा रहा था, वो थोड़ी ऊंची सतह थी। कुछ देर सुस्ताने के बाद वो फिर पीछे की तरफ सरकने लगा। उस मशक्कत के बाद वो उस पतली सुरंग नुमा ढलान के बाहर आ गया था। अब वो उठकर खड़ा हो गया था। उसने श्रेया को आवाज देकर बुला लिया। श्रेया के पास आने के बाद उसने कहा, हमने गुफा से बाहर जाने का रास्ता तलाश कर लिया है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें उसी पतली सुरंग में लेटकर गुजरना होगा। तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। सर्जेंट सलीम ने श्रेया का हाथ पकड़ लिया और दोनों धीरे धीरे उस पतली सुरंग की तरफ बढ़ने लगे। सुरंग के नजदीक पहुंचकर उसने श्रेया से लेटकर धीरे धीरे आगे बढ़ने को कहा। श्रेया लेट गई और धीरे धीरे सुरंग में सरकने लगी। इसके साथ ही सर्जेंट सलीम मन ही मन गिनती काउंट करने लगा। श्रेया के कुछ दूर निकल जाने के बाद सलीम भी लेट गया और नीचे की तरफ सरकने लगा। सलीम ने 430 तक गिनती गिनने के बाद श्रेया से कहा, अब तुम रुक कर ऊपर की तरफ हाथों से एक होल तलाश करो, आसपास ही होगा। हाँ, मिल गया, श्रेया की आवाज में खुशी का भाव था। अब तुम उस छेद में खड़ी हो जाओ, मैं भी आ रहा हूं। सर्जेंट सलीम सरकते हुए श्रेया के पास पहुंच गया, उसे सहारा देकर छेद से ऊपर चढ़ा दिया। उसके बाद खुद भी उस छेद से ऊपर चढ़ गया। सर्जेंट सलीम और श्रेया छेद के जरिए गुफा से आजाद तो हो गए, लेकिन उनका अंदाजा गलत साबित हुआ था। वो अभी भी खुले आसमान के नीचे नहीं पहुंचे थे, अभी परेशानियां बची हुई थीं। सर्जेंट सलीम अपनी समझदारी की वजह से गुफा से बाहर आ गया था। उसने पहले उस बड़े छेद से श्रेया को बाहर निकाला और फिर खुद भी ऊपर पहुंच गया। अब उसके सामने एक नई मुसीबत थी। वो एक दूसरी गुफा में पहुंच गया था, यानी आसमान से गिरे खजूर पर अटके। वो थक कर पथरीली जमीन पर लेट गया था। उसका इरादा सुस्ताने का था। काफी मेहनत की थी उसने यहां तक पहुंचने के लिए। कुछ देर बाद उसे फिर से बाहर निकलने की कोशिश करनी थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, लेकिन वो मुश्तबा सलीम था, हार ना मानने वालों में से एक। उसे अपनी बेबसी पर एक बार भी पछतावा नहीं हुआ था, क्योंकि उसके पास एक भी ऐसा सामान नहीं था जिससे मदद मिल सके। जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ किसी जानवर की खाल लिपटी हुई थी, इसके बावजूद उसके हौसले बुलंद थे। अब हम कहां आ फंसे? श्रेया ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। वो भी जमीन को टटोल कर बैठ गई। एक नई गुफा में, सलीम ने लेटे लेटे जवाब दिया। इससे बेहतर तो हम वहीं थे, कम से कम वहां से निकलने की उम्मीद तो थी। कुछ देर बाद सर्जेंट सलीम ने कहा, वहां बेहतर नहीं थे, वहां जाने कब तक बंद रहना पड़ता? यहां से भी निकलने की उम्मीद है, वरना वापस लौट चलेंगे। अगली रात तक तो निकल ही सकते हैं, वो रात को मेरे लिए खाना लेकर आते हैं। इस रात से उस रात तक गुफा में बंद रहकर इंतजार करना बुजदिलों का काम है। हो तो आप बुजदिल नहीं हैं? श्रेया ने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में पूछा। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अच्छा जी, क्या है दिल में? दिल तो जामुन के पेड़ के कोटर में रखाया हूं। हाँ, तो क्या बंदर हो? बाबा डार्विन ने तो कुछ ऐसा ही फरमाया है। अच्छा एक बात बताइए, श्रेया ने बात बदलते हुए कहा। जी फरमाइए, आप यहां कर क्या रहे थे? मतलब मेरा मतलब है कि आप इन जंगलियों के साथ इतने आराम से कैसे रह रहे थे? भाग क्यों नहीं गए? ये बात तुम दूसरी बार पूछ रही हो, सलीम ने कहा। फिर से बता दीजिए ना, श्रेया ने अदा से कहा। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही। दो वजहों से जंगलियों के बीच रुका रहा, मैं तुम्हें लिए बिना यहां से नहीं जा सकता था। दूसरी बात, मैं इतना कहते कहते सर्जेंट सलीम चुप हो गया। वो कहना चाहता था कि शेयाली यहां जंगलियों के बीच मौजूद है, वो उसे भी साथ ले जाना चाहता है, लेकिन कुछ सोचकर उसने शेयाली का जिक्र रोक दिया। चुप क्यों हो गए? मैं कह रहा था कि शेर की खाल की मुझे तलाश थी, मैं उसे साथ ले जाना चाहता था। तुम मुझे इतना पसंद करते हो? श्रेया ने पूछा। मतलब मतलब कि तुम मेरे बिना यहां से नहीं जाना चाहते थे, श्रेया ने जज्बाती होते हुए कहा। मैंने ही तुम्हें मुश्किल में फंसाया है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें सही सलामत पहुंचा दूं, ये मेरा फर्ज है। तुम भले और बहुत प्यारे हो, श्रेया ने कहा। नहीं, मैं जंगली हूं, दिन के उजाले में मुझे देखोगी तो डर जाओगी, सलीम ने पूरी गंभीरता से कहा। इसके साथ ही सलीम उठ खड़ा हुआ। चलो अब यहां से निकलने की कोशिश करते हैं। विक्रम ने ड्राइंग रूम में आकर दरवाजे को बोल्ट कर दिया। वो एक कुर्सी पर गिरकर हांफने लगा। वो काफी डरा हुआ था। उसके पास भी दो पिस्टल थीं, इनमें से एक का लाइसेंस भी था उसके पास। वो अच्छा निशानेबाज भी था, लेकिन मौजूदा हालात में वो काफी डरा हुआ था। विक्रम आंखें बंद के काफी देर ऐसे ही बैठा रहा। अचानक वो उठकर खिड़कियों की तरफ भागा। उसने जल्दी जल्दी बाहर लॉन की तरफ खुलने वाली खिड़कियां बंद कर दी और ऊपर से पर्दा सरका दिया ताकि बाहर से उसे कोई देख ना सके। विक्रम ने एक बड़ा पैक बनाया और एक ही सांस में कटक गया। कुछ देर यूं ही बैठा रहा। उसके बाद इंस्पेक्टर सोहराब को फोन मिलाने लगा। फोन तुरंत ही पिक हुआ था। जी विक्रम साहब, बताइए, सब खैरियत? कैसे फोन किया?
खैरियत नहीं, आप तुरंत मेरे घर आ जाइए।
विक्रम की आवाज में अब भी घबराहट थी।
डरिए नहीं, पूरी बात तो बताइए।
विक्रम ने एक ही सांस में उसे पूरी बात बता डाली।
परेशान मत होइए, मैं आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से आवाज आई।
ओके, थैंक यू।
ये कहने के बाद विक्रम ने फोन काट दिया। वो बेचैनी से बड़े से ड्राइंग रूम में टहलने लगा। कुछ वक्त यूं ही टहलता रहा, तभी डोर बेल बजी। उसने मैजिक आई से झांक कर देखा, गार्ड खड़ा था। उसने चिंघाड़ते हुए अंदाज में पूछा,
क्या है?
आपसे मिलने हैं, इंस्पेक्टर सोहराब आए हैं, गार्ड ने मिमियाते हुए कहा।
इतनी जल्दी?
विक्रम ने कहा और दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर आया। विक्रम ने देखा सोहराब लॉन में बैठा सिगार पी रहा था।
आप इतनी जल्दी कैसे आ गए?
विक्रम ने आश्चर्य से पूछा।
जब आपने फोन किया तो मैं आपके बंगलों के करीब ही था, आपसे ही मिलने आ रहा था।
ठीक, कोई खास बात?
विक्रम ने पूछा।
हाँ, काम से ही आया हूँ, लेकिन पहले मुझे वो जगह दिखाइए जहां पर गोली चलाई गई थी।
विक्रम लॉन की वो जगह उसे दिखाने लगा जहां पर वो बैठा शराब पी रहा था।
आप उसी तरह बैठ जाइए जिस अंदाज में आप बैठे थे।
मुझे याद नहीं कि मैं कैसे बैठा था।
बहरहाल आप बैठिए तो सही।
विक्रम उकताए हुए अंदाज में बैठ गया। उसके बाद सोहराब उसके सामने जमीन पर उकड़ू बैठकर गोलियों का अंदाजा लगाने लगा। वो कभी लॉन की कच्ची मिट्टी की गोलियों से बने सुराख को देखता तो कभी पीछे पलट कर देखने लगता। कुछ देर बाद वो उठकर खड़ा हो गया और मुड़कर बंगलों के सामने के हिस्से को ध्यान से देखने लगा। सामने पेड़ों का झुरमुट था। सोहराब ने जेब से माचिस जैसी चौकोर एक डिबिया सी निकाली। वो एक फोल्डिंग चाकू था, उसमें से मुड़े हुए तीन हिस्से निकलते चले गए। अब वो एक लंबे चाकू में तब्दील हो गया था। सोहराब फिर से बैठ गया और चाकू को गोली से बने सुराख में डाल दिया। वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि मिट्टी में कितना गहरा सुराख हुआ है। उसके बाद उसने उसी चाकू की मदद से तीनों गोलियां निकाल ली।
मेरा अंदाजा सही था,
सोहराब ने खड़े होते हुए कहा।
सामने से और काफी दूर से ये गोलियां चलाई गई हैं। अगर ये गोलियां आपको लग भी जाती तो ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन एक बात की दाद दूंगा, गोली जिसने भी चलाई है उसका निशाना परफेक्ट था।
मैं आपकी बात नहीं समझा,
विक्रम ने कहा।
समझाता हूँ,
सोहराब ने सामने की कुर्सी पर बैठते हुए कहा।
ये गोलियां पिस्टल से चलाई गई हैं। आपके इस बंगलों के सामने ढेरों पेड़ हैं। उनमें से किसी पेड़ से और काफी ऊंचाई से ये गोलियां चली हैं। गोलियों के जो सुराख हुए हैं वो तिरछे हैं। दूसरे, इस लॉन की बाउंड्री इतनी ऊंची है कि सामने से गोली चलाना मुमकिन ही नहीं है। आम तौर पर पिस्टल की रेंज 200 गज से ज्यादा नहीं होती। यहां से सामने की वो जगह भी तकरीबन इतनी ही है, इसीलिए जमीन में ज्यादा गहरे सुराख नहीं हुए। प्लीज वेट,
सोहराब ने कुर्सी से उठते हुए कहा। सोहराब गेट से बाहर आ गया। शेयाली के इस बंगलों के आसपास काफी सारे पेड़ थे। दूसरे बंगलों या कोठियां यहां से काफी दूरी पर थी। दरअसल ये पूरा इलाका ही जंगलाती था। श्याली के बंगलों के सामने पेड़ों के झुरमुट थे। सोहराब के अंदाजे के मुताबिक गोलियां वहीं किसी पेड़ से चलाई गई थीं। वो आसपास के तमाम हिस्सों का जायजा लेने लगा। उसे एक पेड़ के नीचे जमीन पर तेल की कुछ बूंदे नजर आईं। पास ही किसी मोटरबाइक के पहियों के निशान भी थे। उसने झुककर तेल की बूंदों को उंगली से छुआ और सूंघने लगा। उसकी उंगलियों में तेल की महक आ रही थी, यानी अब से कुछ देर पहले ही तेल गिरा था। सोहराब ने अपने जूते उतार दिए। वो पेड़ पर चढ़ रहा था। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसने सामने की तरफ देखा। उसे विक्रम बैठा दिख गया। विक्रम भी उसकी तरफ देख रहा था। सोहराब ने कोट की जेब से मैग्नीफाइंग ग्लास निकाल लिया और पेड़ की डालियों का जायजा लेने लगा। पेड़ की एक डाली पर एक लंबा सा पीले रंग का बाल फंसा हुआ था। सोहराब ने बाल को वहां से निकाल कर जेब में डाल लिया।
ओह, तो ये काम उन्हीं मुहतरमा का है,
सोहराब धीरे से बुदबुदाया। दरअसल सोहराब की कार ने जब गेट से एंट्री की थी तो एक महंगी मोटरबाइक पर सवार लड़की हड़बड़ाहट में उसकी कार के सामने आ गई थी। सोहराब लड़की का चेहरा नहीं देख सका था क्योंकि उसने हेलमेट लगा रखा था। अलबत्ता उसने बाल खुले छोड़ रखे थे जो हवा में लहरा रहे थे। बालों को पीले कलर से रंगा गया था। उस वक्त उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि इस इलाके में ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री के ही लोग रहते हैं, उनका आना जाना तो होता ही है। सोहराब पेड़ से नीचे उतर आया और अब उसका रुख दोबारा श्याली के बंगलों की तरफ था। गेट के ठीक बगल में बनी हुई गुमटी में दो गार्ड बैठे हुए थे। सोहराब रुक कर उनसे पूछताछ करने लगा। दोनों गेटमैन ने बताया कि उन्होंने किसी को भी उन पेड़ों की तरफ जाते हुए नहीं देखा था। उसके बाद सोहराब अंदर आ गया।
जिस पेड़ पर मैं चढ़ा था गोली उसी पेड़ से चलाई गई है,
सोहराब ने विक्रम के सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो गहरी नजरों से विक्रम को देख रहा था।
सोहराब साहब, लेकिन इस सबका मकसद क्या है?
यही तो हम आपसे जानना चाहते हैं,
सोहराब ने विक्रम खान की आंखों में देखते हुए कहा।
मैं आपकी बात नहीं समझा,
विक्रम की आंखों में बेचैनी के भाव पैदा हो गए थे।
कोई तमाशबाजी के लिए तो आप पर गोली चलाएगा नहीं,
सोहराब ने विक्रम को तीखी नजरों से देखते हुए तंज किया।
आपका मतलब है कि ये सब मैंने किया है?
अगर किसी को आपको मारना होगा तो वो इतनी दूर से गोली नहीं चलाएगा मिस्टर विक्रम,
सोहराब की आवाज में थोड़ा भारीपन था। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, विक्रम ने पेशानी पर बल लाते हुए कहा।
आपके दोनों गार्डों का भी बयान है कि उन्होंने किसी को पेड़ की तरफ जाते हुए नहीं देखा,
सोहराब ने कहा। यह भी तो मुमकिन है कि कोई पीछे से आया हो, विक्रम ने जवाब दिया।
सवाल मकसद पर टिका हुआ है, यानी कोई ऐसा क्यों करना चाहता है?
मुझे डराने के लिए,
विक्रम ने कहा।
कौन है वो,
इंस्पेक्टर सोहराब ने सवाल किया। आखिर न्यूड पेंटिंग का राज क्या है? विक्रम को कौन खौफ जदा करना चाहता था? सार्जेंट सलीम और श्रेया का क्या हुआ? इन सवालों के जवाब पाने के लिए सुनिए शोलागढ़ @34 किलोमीटर का अगला भाग सिर्फ गाथा पर।